शरीर से आप काम करें, किस मन से आप काम करें, पैसे से काम करते हैं, किसी प्रकार से भी एनर्जी भगवान की। अब ये लोग कपड़े सिलाई करके खर्च से बाजार करके ठाकुर जी के लिए देते हैं, जरूर उनके लिए चिंता आएगी, अगर चलो तो ठाकुर जी को पहना करके देखेंगे, ठाकुर जी की चिंता आएगी, दिन रात उसकी चिंता करते। उसी तरह से कुछ चिंतन जितने उच्च अधिकारी बच्चों के प्रति गुरु के प्रति कुछ एनर्जी जाएगी, वो कुछ न कुछ जरूर काम करेगी। और नहीं तो भाई फिर उलट जाएगा। भक्ति किसको कहते हैं, अब बतलाइए तो भक्ति किसको कहते हैं, नहीं बतला सके। ओम प्रकाश जी को कहेंगे ये 50 बार सुने किंतु ये भी घबरा जाएंगे, संग नहीं करेंगे ये। ओम प्रकाश जी आज पहले संग थोड़ा सा करता था, आजकल हम लोगों से बहुत दूर रहने लग गया।
मैं
बहुत दूर रहता तुम्हारे कहने
से,
अच्छा बतलाओ तो तुम बतला, तुम बतला तो हमको भक्ति की
क्रिया हो गया,
तुम बतलाओ बतलाओ भक्ति की, तब हम समझेंगे हमारे संग में रहता। तुमको मैं चाहता था कि कहाँ उसके सोपान पर ले
भक्ति की उत्पत्ति हुई है। और
भक्ति मैंने भक्ति का डिफिनेशन जो बतलाया है क्या है, रूप गोस्वामी ने जो कहा है
भगवान की सेवा को भक्ति कहते
हैं, नहीं
भजन
नहीं, वो तो है। विवाह किसको कहते हैं बतलाइए तो,
सप्तपति के साथ
एक लड़की का, एक लड़के के साथ वैदिक रीति से हम लोगों में तो वैदिक होता है, और जैसे भी हो उनमें दोनों को परस्पर मिला करके सारे जीवन के लिए व्यवस्था करनी होती है, एक साथ में रह करके घर गृहस्थी करो, इसका नाम है विवाह।
सत्पति आवश्यक है, उसके बिना तो वो पत्नी नहीं कराएगी।
हाँ तो वैसे ही सब चीज की, सब चीज का डेफिनेशन है, परिभाषा है। भक्ति का परिभाषा ही नहीं जानेंगे तो भक्ति करेंगे क्या खास। भक्ति को जानने के लिए भक्ति किसको कहते हैं, जब अपने तन से मन से वचन से तीनों की चेष्टाएं होंगी, ये कृष्ण कैसे प्रसन्न हो, कैसे प्रसन्न हो, और प्रसन्न हो करके और कुछ नहीं चाहिए, हमारी भक्ति उनके प्रति बढ़ी बढ़े, अपने लिए नहीं, जैसे हमको ये हो जाए वो ऐसा तो भक्ति नहीं होगी, उनकी सेवा करने पर भी नहीं होगी, तन मन वचन से उनको लिए सब कुछ करेंगे किंतु उसके बदले में हमको कुछ लाभ हो तो फिर भक्ति खत्म हो जाएगी। ये सब तो जानना चाहिए ना, ये साधु संघ है, कोई आ गया बैठ गया बस दो चार दस भर की बात हो गई उसको साधु संघ नहीं कहते। साधु संघ उसको कहते हैं जिसका संग कर रहे हैं वो आपको शासन करेगा, जैसे मास्टर पढ़ाते हैं बच्चों को प्रेम से शासन से, जैसे तैसे उस विषय को एकदम ठीक करा देते हैं, इसका नाम है साधु संघ। साधु संघ माने एक साथ में खाया पिया खूब मौज किया इधर उधर घूमाए, ये नहीं, हमें तो जीवन बर्बाद हो जाएगा। बहुत से लोग मठ में आए, इसको उनको देख लीजिए 99% सब सन्यासी लोग क्यों चले गए, उच्च अधिकारियों का संग नहीं किया, सोचा कि पुस्तक बेचना ही और पुस्तक दे करके पैसे ले आना ही, मंदिर बनाना ही, ये साथ और ये भजन, ये भजन को जानने के लिए भजन कहते हैं कि और सब थोड़ा भी करेंगे उसका फल। एक आदमी भागवत पाठ कर रहा है और कीर्तन कर रहा है, 1,00,000 हरिनाम करता है, एक लाख हरि नाम कर रहा है और भागवत का पाठन भी और चढ़ावा भागवत का आता है उसे परिवार का पोषण करता है और हरिनाम करता है, किंतु कुछ वचनों की निंदा भी करता है, गुरु की भी गुरु की बात नहीं मानता, ये भक्ति होगी कि नहीं? ऊपर से देखने से ये चेहरा तो भक्ति का है, तो भक्ति नहीं होगी।
काय मन वाक्य भी समझ लो,
तीनों काय मन भगवान का चिंतन सबसे, और ऐसा होने से होगा क्या? गुरु की निष्ठा। और बड़ा धीम हो जाएगा सब वैष्णव का अनुगत सबसे प्रार्थना कर प्रणादपि सुनीचेन सहिष्णुता उसमें गुण आएगी, सबको सम्मान जथा उचित देगा, अपने सम्मान की लालसा नहीं, ये सब गुण उसमें अवश्य संभव। एकलव्य जैसा और कोई गुरु भक्त बतलाइए तो कोई है कि नहीं? जितना बड़ा एकलव्य भक्त था ना, अपने गुरु जी के लिए अंगूठा दे दिया ना। अच्छा, ऐसा और कोई बतलाइए तो कोई गुरु भक्त ऐसा कोई देखा कितना अच्छा है, बतलाइए। उसका जोड़ का एक और निकालिए तो हमारे इतिहास में ओम प्रकाश जी थोड़ा सा सहायता इनकी कीजिए ना, वैसा कोई ढूंढिए तो इतिहास में।
मुझे साधु संग नहीं होता है, साधु संग नहीं मिलता है,
साधु संग मिलता है तो छूट मिलता है। तुमको 50 वर्ष हो गया साधु संग करते,
वो सब जो है
50 वर्ष नहीं हुआ,
40
साल। उसको वायर तो निकाल लीजिए, नहीं तो वो वायर निकाल लीजिए, ऊपर सुबह आवाज ठीक सुनाई पड़ा।
बतलाओ तो ओम प्रकाश जी, दूसरा कोई ऐसा सुंदर अच्छा एकलव्य जैसा गुरु भक्त? एकलव्य गुरु भक्त नहीं था, एकलव्य क्या था? गुरु द्रोही, भक्त नहीं था। स्कूल वाले भी नहीं समझ, वो अपने शिष्यों को एकलव्य
प्रतिमा को लेकर के मान लिया था,
इसलिए भक्त नहीं है। वो भगवत भक्तों का द्रोही था और भगवान का। वो अर्जुन को हराने के लिए, पांडवों को मारने के लिए और कृष्ण को नीचा दिखलाने के लिए वो द्रोणाचार्य जी से अस्त्र चाहता था। द्रोणाचार्य जी कुछ अंतर्यामी भी थे, लौकिक पारलौकिक दोनों विषयों के गुरु। नहीं नहीं भाई, तुम्हें तो अस्त्र शिक्षा नहीं देंगे, तुम जाओ, नहीं दिया। किंतु उसने वन में लौट करके उनकी प्रतिमा बना करके और उससे सीखा और ऐसा धुरंधर हुआ कि पांचों पांडवों को लेकर के द्रोणाचार्य जंगल में जा रहे हैं और एक साथ में कुत्ता भी लग गया। कुछ परीक्षा लेना चाहते थे इन लोगों का, जैसे कहां तक धनुर्विद्या में पारंगत है। थोड़ी देर में जब जंगल में पहुंचे तो देखा कि वो कुत्ता भौंकने लगा 8 बार, तो किसी ने ऐसे बाण चलाया उसका पूरा मुख भर गया कि तो खरोंच तक नहीं आई तनिक भी, और पूरा मुख बंद हो गया। उन्होंने देखा जी, 1 सेकंड के अंदर में ये कैसे हो गया? ये तो एक बड़े धनुर्धर का कार्य है, ऐसे साधारण एक बाण से मुख भर गया है, भौंका 1 बार और साथ ही साथ में बाणों से भर गया। और कहीं भी उसको आघात नहीं लगा। तो जिधर से आवाज आ रही थी कुछ उधर ही नहीं, बढ़ते बढ़ते देखा जैसे निकाल एक नौ युवक काला था, धनुष बाण लिए हुए और आया और उसके सामने द्रोणाचार्य की मूर्ति मिट्टी की बनी हुई। भाई ये कुत्ते के मुख में किसने बाण मारा? तो मैंने मारा। तो धनुष बाण में बड़ी पावर, तुम्हारे गुरु जी का नाम क्या है? मेरे गुरु जी का नाम द्रोणाचार्य और उनके साष्टांग प्रणाम किया, मैं तुम्हारा गुरु हूँ। ठीक, तो तुम इतना पारंगत हो गया और हमें दक्षिणा तो दी नहीं, आप जो दक्षिणा चाहें वो दे। ठीक, तो बड़ी दक्षिणा हमको लाओ, क्या चाहिए? तुम दाहिना अंगूठा काट करके दे दो, साथ ही साथ में तलवार दिला। सब लोग देकर के आवाज
उसी के बस हो गई।
किस ले लिया
इसको?
अर्जुन और का बराबरी ना कर सके और कोई गड़बड़ी ना करे। कुछ दिनों के बाद में वो ऐसा और निकला कि कौरवों के पक्ष से अर्जुन को और पांडवों को मारने के लिए और कृष्ण को मारने के लिए चेष्टा। अंत में कृष्ण से उसका युद्ध हुआ और कृष्ण ने चक्र सुदर्शन से उसका ऐसा असुर था गुरु गुरु भक्त। गुरु शिष्य वह है जो गुरु की इच्छा के विपरीत कुछ न जो कहें और उसे सभी कुछ हो जाएगा। एक गुरु थे उनका नाम आयुध्यम या क्या था, उन्होंने शिष्य को कहा कि हमारी गायों को चरा लेना, ब्रह्म ज्ञान के लिए उनके पास आए। गाय चराने अरे तुम मोटा ताजा दिखता है, ये गैया चराता है, खाता क्या है? हमारे यहाँ तो कुछ खाता नहीं है, जान बूझ करके नहीं देते। तो उसने गैयों का दूध पी लेता, अरे हमारे आदेश बिना गैया का दूध पी लेता है, ये तो बात ठीक नहीं। हमारी गैयों को चरा करके लाएगा, हम जब भी कुछ देंगे तो, और तुम ऐसे ही खा लेता है। अच्छा गुरु जी, फिर दस पाँच दिन बीत गए, उनको बुलाया शिष्य को, अरे भाई देखते हैं तो बहुत ही मोटा ताजा ही है, तो क्या खाता है? दूध पीता है तो नहीं तो, तो क्या करता है? तो जब गायें घास चर करके रात में बैठ करके पागुर करती हैं तो यहाँ पर कुछ लग जाता है, वो फेन होता है, फेन हो जाता है, फेन लग जाता है, उसको मैं चाट लेता हूँ। ओ ये तो अच्छी बात नहीं, बहुत जल्दी बात फैन समझते हैं ना, अच्छी बात मत करना। दस पाँच दिन के बाद में फिर उनको पुकारा तो वो आया नहीं। भाई कहाँ गया? खोजते खोजते उसका नाम पुकारते हुए, अयोध्या अयोध्या कहाँ तू है? गुरु जी मैं कुएं में गिर गया हूँ। कैसे गिर गया?
उपमन्यु गुरु जी का नाम धूम।
कैसे गिर गया? तो गुरु जी मैं भूख लगी थी, गाय का तो ये दूध और ये भी मना था, तो मैंने एकवन का पत्ता में दूध होता है उसको मैंने खा लिया और खाते ही हमारी आंखें अंधी हो गई।
अच्छा
एकवन एकवन का पत्ता अकौआ उसको मैंने पी लिया खा लिया और वो आंख इसलिए मैं तू नहीं देता। उसको निकलवाया, निकलवा करके उसके सिर पर हाथ रख दिया, जिस काम के लिए तू हमारे पास आया था ब्रह्म ज्ञान के, हमारे कृपा से जब हमारा आदेश तुमने माना जो जो कहा जाओ सारी विद्याएं ब्रह्म ज्ञान तुमको अभी तुरंत
मिल
और साथ ही साथ गुरु जी का संस्कृत में श्लोक तव करते हुए और ब्रह्म ज्ञान उसको देता। मैं सब जगह ब्रह्म, मैं भी ब्रह्म का एक अंश हूँ और ये सारे संसार में उसके बिना कोई एक कोई सत्ता ही नहीं हो सकती। ये गुरु जी की कृपा है, बिना किसी पढ़े लिखे हुए बस गुरु बात। गुरु भी वैसा हो, शिष्य भी वैसा। नहीं तो जिसके लिए परिश्रम करेंगे वही चीज, धन के लिए परिश्रम करेंगे धन मिलेगा, धन नहीं भी मिलेगा किंतु इसके लिए करने पर जरूर मिलेगा अवश्य में। सब हम कुछ प्रयास कर सकते हैं भक्ति के, भाव भगवान की कृपा से होगा, वहां पर अपना साधन भजन कुछ नहीं काम करेगा। कामना वासना हम छोड़ सकते हैं, ये हमारे अधिकार में है, कामना वासना छोड़ दिया, किंतु वो चीज कहां से आएगी? आप परिश्रम करेंगे, मिल का मालिक, बिजनेस का जो मालिक है वो पैसा देगा तब तो मिलेगा, पैसा देना उसका काम है और परिश्रम करना आपका काम है। तो आप भक्ति के लिए परिश्रम कर सकते हैं किंतु देना भगवान के हाथ में है इसको। इसलिए हरि कथा ये हरि नाम इत्यादि करना ही नहीं है, ये तो हमारे बात में है, किंतु हमारे जीवा पर भगवान का नाम नित्य करे और फिर उसमें नींद न आए, आलस्य न आए और अपने आप सो रहे हैं, जग रहे हैं, नाम अपने आप हो रहा है, उसमें कोई भी प्रयास, ये भगवान का नाम, ये भगवान के हाथ में, हमारे हाथ में। किंतु निष्कपट होने से की था गुरु जी का कल 14 तारीख को 100 वर्ष उनके जन्म से पूरा हुआ था।
सरस्वती महाराज का
नहीं, हमारे गुरु जी का।
अच्छा, कैसे महाराज जी का?
हाँ
अच्छा,
तो उसके लिए हम लोगों ने एक आयोजन किया, उसमें हमारे भारतवर्ष से इधर से उधर से हजारों भक्त लोग आए थे,
मथा में
नवदीप में,
नवदीप में।
तो मैं भी विदेश से वहीं पर डायरेक्ट आ गया।
नवदीप परिक्रमा भी आए हैं क्या?
परिक्रमा करके नहीं, परिक्रमा पीछे होगी। अभी गुरु जी का 3-4 दिन का उत्सव था, दिन रात हरी कथा हुई, बहुत अच्छी अच्छी कथाएं हुई।
तो वो तो महाराज पहुंचे हुए महात्मा, उनकी क्या बात है?
गुरु तत्व के संबंध में गुरु की
हरि चरणों में स्थित है, उनको क्या है? उनका भगत भाव होता है,
बस उनका नाम स्मरण किया जिससे हमारा भी कल्याण हो, उनके जैसे हम लोग भी।
देवानंद जो मठ है ये शिष्य ने बनाया, उसके नाम से रखा गया देवानंद। उसने रिपेयर लेके बनाया था, बड़ा बढ़िया किया, अपना घर बिक्री कर दिया। और ये देवानंद का हम अंदाज लगा लिए उसी के नाम से है, बड़ा बढ़िया। धन्यवाद आप लोग, मानव जीवन सफल कर दिया आप लोगों ने, भगवान के चरणों में सिर रख दिया, बाप से बाप सर्व अर्पण कर दिया, सर्वस्व अर्पण कर दिया आपने, आपको रखा ही नहीं। हमारे जब साधारण आदमी को पार करने के लिए आ जाते दया करके, कृपा है आपकी।
बहुत अच्छा रहा, दिन रात बस भगवत तत्व में सब लोग लगे रहे,
जो इस मार्ग में पड़ गया था वो छोड़ ही नहीं सका, रात और दिन उसका एक
पकड़ेगा।
कल देगा बाहर तो देगा, महत्व से दुर्लभ है,
सब्जी वगैरह बाजार का जो भी है
बाहर तो देगा, कल मिलते ये खोपड़ी बैठ जाएगा
और जो हम पर आने जाएगा, ठीक है ना? बड़ा तो जैसा लग गया।
महाराज आपका दर्शन हो गया, बड़ा अच्छा काम है, बड़े भाग्य से मिलता आप लोगों को।
मैं बहुत दिनों से सोच रहा था कि कब ऐसा होगा कि किसी वैष्णव का दर्शन मुझे मिल जाए, किसी वैष्णव का दर्शन मुझे मिल जाता तो बड़ा अच्छा।
अरे कौन पहले आपको बता दिया बंसक भगत का ही धाम के
बता देना
बंसक भगत का ही धाम के उनमें
जो प्रतिदिन सब समय भगवान के नाम में मत रहते हैं, ठाकुर जी की सेवा में रहते हैं, जिनको अपना होश नहीं है, जिनकी सारी संपत्ति लग जाती है ठाकुर जी की सेवा में,
बराबर
वो वैष्णव है।
बराबर
तो वैसा वैष्णव जगत में कम है, केवल एक दो ही हैं। उसमें एक को मैं जानता हूँ और किसी को नहीं जानता।
वो कौन है? वो कौन है
जो हमसे बातचीत कर रहा है?
वही पहले बताया, वही बंसक भगत वही है, ठीक है। प्रकाश जाने बंसक भगत का ही नाम के कंसर काम में को काम के
जी कह रहे हैं, जो हमसे बात कर रहे हैं
धर्मशाला जो है ना नवदीप वाली
मद भक्तेश अभिदास करके,
तो वो तो
अभिदास से मोह कलम मोह है जो छूटेगा नहीं, सुनार गया सुनार गया।
भक्ति में मोह रहे और न रहे कोई बात नहीं है, मोह थोड़ा सा रहे कृष्ण में मोह ही लगा दो तो भी कल्याण हो जाएगा। मोह आपका है ना, मोह यदि है तो कृष्ण में लगा दो,
तो
काम है तुम्हारे अंदर में तो काम कृष्ण में लगा दो, यदि भय है तो कृष्ण में लगा दो, किसी प्रकार से कृष्ण में चित्त लगा दो,
ध्यान लगाओ
बस हो जाए। यदि काम तुमको हो रहा है संसार में तो कृष्ण से बढ़ करके सुंदर कोई नहीं है, बस उनमें काम लगा दो,
बात ठीक है, उसको ट्रांसफर कर दो उधर,
बस
उधर ट्रांसफर कर दो,
बस
संसार से मत करो प्रेम, प्रेम करो उससे।
काम और प्रेम में अंतर है, काम संसार में बांध देता है, मोह है, किंतु कृष्ण में ये काम भी लगाओ
तो छुटा देगा,
तो छुड़ा करके गोपियों जैसा प्रेम दे देगा। ये भागवत का संदेश है, गीता में सब समय कहे काम छोड़ो क्रोध छोड़ो, कृष्ण कहते हैं गीता में ये काम छोड़ो, काम छोटेगा नहीं, बड़ा कठिन है। बड़े बड़े ऋषि ब्रह्मा तक और शंकर तक नारद तक गिर गए, इसलिए इतना कलयुग में ये छोड़ना मुश्किल है, तो क्या करो काम कृष्ण में लगा दो बस।
बात तो ठीक ही है,
छोड़ो मत कोई चीज।
तो कर्म न समझ बच्चा सिद्धि मिंदी मानो, तो कर्म न समझ बच्चा सिद्धि मिंदी मानो है, अपने कर्म से उसका उसके लगा दो।
जो कुछ तुमको है
ईद करो,
कुछ भी आए दे दो,
ईद करो, ये ज्वार जी दयाल ये तब उसको मत अर्पण, मेरे को अर्पण करते जाओ।
इसमें भी बंधन है, इसमें भी बंधन हो जाएगा। तुम्हारा है क्या जो तुम कृष्ण को अर्पण करेगा? क्या है तुम्हारा? रहे तब तो अर्पण करेगा, नहीं सुन रहे? यही तो मुश्किल है आपसे बात
करना।
आपका ये संसार में क्या चीज है जो भगवान को देंगे?
क्या देंगे?
क्या है? पत्र भी तुम्हारा है, उन्हीं का तो है, तो क्या समर्पण करेगा तू? इसलिए तुम्हारा कुछ नहीं है समर्पण करने के लायक, तू है ही नहीं, वो भी तुम्हारा अभिमान है, मिथ्या अभिमान। इसलिए तुम उनको हो जाओ बस इतना ही।
बिगिनर्स को समझाने के लिए है, जिसने शुरुआत किया उसको एक रास्ता डालते हैं,
उससे भी सहज है, तुम कृष्ण के बन जाओ, बस कृष्ण को मैं तुम्हारा हूँ बस।
पूरो भलो तो खबरो जो कुछ सही मानो सुधारो, मारवाड़ी भाषा का भाषा है, तो अच्छा बुरा जैसा हम तुम्हारा हम तुम मारे को सुधारो,
बस बस ऐसा। वो अभ्यास इतना करे ये क्रोध को छोड़ो, बोलते क्रोध को कौन छोड़ेगा? क्रोध को छाड़ना सहज है, कृष्ण ने तो कह दिया क्रोध को छोड़ दो, तो 10-20 लाख जन्म लग जाएगा क्रोध छोड़ने में, तो जीवन बर्बाद हो गया। ये ज्ञानी लोगों के लिए कहा गया, भक्तों के लिए नहीं कहा गया। उनके लिए तो ये कहा गया सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम ब्रज, जैसे हो छोड़ करके बस हमारा शरणागत। घर में गृही है, गृहस्थ है, तो भी वहीं से कहो जैसे मैं तुम्हारा हूँ, हमारा सर्वस्व तुम्हारा है, बस ये कहने से ही बस
सरल मार्ग जाए, मार्ग जाए,
सहज मार्ग,
फॉल्ट नहीं है
इसमें। क्रोध को छोड़ने की बात नहीं है, काम छोड़ने की बात नहीं है, जैसा है तो वैसा ही रहा,
आंख नीचे चले जाओ,
चले जाओ बस।
हमारी
अब सब महाप्रभु जी ने गदाधर पंडित की तरफ इशारा किया, अब गदाधर प्रभु के पास में जाने आने लगे, ये हमको मधुर रस की उपासना का मंत्र दे दो। कहिए यदि महाप्रभु सुनेंगे तो हमको त्याग कर देंगे, तो भी महाप्रभु जी ने उनको इशारा कर दिया, दे दिया। तब उनको क्लीन कृष्णाय गोविंदाय की उपासना गोपी जन वल्लभाय की थी, तब से वो उनके पुत्र विठल जी मधुर रस के उपासक, किंतु ये किसी को बतलाया नहीं गया उनके संप्रदाय में। तब से विठल जी ने उस रस से उपासना आरंभ की, किंतु ऊपर से बात्सल्य का ही देते थे।
आपके साथ तो कौन सा दिन थे भी हमको पूछे,
पर जो है ये चमड़ा है, इसके अंदर में मन बुद्धि अहंकार है, और उसके अंदर में आत्मा है, और आत्मा के अंदर में परमात्मा है, कितने तत्व हैं इसमें। हम लोग आत्मा हैं, शरीर नहीं है। जो लोग इस शरीर को मैं समझते हैं, मेरा समझते हैं, और इसके लिए ही व्यस्त रहते हैं, ऊपर से तो हरिनाम करते हैं, किंतु ये भाव रहता है कि मैं शरीर हूँ, और शरीर के बाहरी पर भी विचार करके चलते हैं, उनको चमार कहा गया। वो गए अष्टावक्र जी उनके दरबार में, जनक के दरबार में, उनको देख करके सभी हंसने लगे। काला पद उठा और अंगों का टेढ़ा आया है,
तो उपहास किया, उनका
उपहास किया, हंसने लगे, तो ये भी हंसने लगे। जब हंसने लगे तो महाराज जनक ने कहा, जे महाराज आप क्यों हंस रहे हैं? कहे ये लोग किस लिए हंस रहे हैं? तो ये तो आपका ये शरीर देख करके ये टेढ़ा मेढ़ा और यहाँ पर आ गए उन्होंने कहा कि जो शरीर को देख करके हंसता है वो चमार है, यहाँ पर सब चमार बैठे। मतलब
वो कौन से थे यहाँ पर?
उन्होंने राजा जनक ने पूछा जे क्यों आपने हंसा, तो उन्होंने कहा जे मैं हंसा नहीं रोया, इसलिए कि मैं हजारों मील पैदल चल करके बड़े कष्ट से यहाँ आया। सुना था जी वहाँ पर आत्मज्ञानी लोग, ब्रह्मदर्शी लोग हैं आपके दरबार में, किंतु यहाँ पर ब्रह्मदर्शी किसी को हमने नहीं देखा, सबको चमार देख रहा। आप यज्ञ बल को, हमको और सबको चमार ही देखते हैं, तो जरूर चमार देखते हैं। क्यों? तो जो चमार होगा वही देखेगा जी, टेढ़ा काला और कटा फटा हुआ ये चमड़ा है, तो इसलिए हमारे आत्मा का आप लोगों ने नहीं देखा जी, आत्मा हमारा कितना उन्नत है। संसार के जितने भी मल हैं उससे ये निर्मल हो गया, ये आप लोगों ने नहीं देखा। ये शरीर देखा जी, टेढ़ा मेढ़ा काला, इसलिए ये सभी लोग चमार। उन्होंने गोदी में उनको उठा करके सिंहासन पर बैठा के उनका पूजा अर्चन की। आप आत्मज्ञानी, इसका ये तात्पर्य पहली स्थिति में थोड़ा सा ये ज्ञान के लिए जरूरी है। आत्मशुद्धि, भक्ति में आत्मशुद्धि की भी आवश्यकता नहीं है, जो जहाँ है स्थान स्थित सुनवान, जो जहाँ है गृहस्थ में है, त्यागी में है, सन्यासी है, ब्रह्मचारी है, गृहस्थ है, कोई भी है, यहाँ तक कि पापी भी है, कोई भी हो, भगवान का नाम लो, किसी से क्रमशः साधु संग हो करके और अपने आप तत्व ज्ञान भी होगा भगवान भी भक्ति।
गुरु जी वहां पर भी रहा था
इसीलिए आत्मज्ञान के लिए कि ये संसार ये जो है ऊपर से ये जो चमड़ा सा दिख रहा है इसी में संसार लगा हुआ है।
ना उनका उद्देश्य भी था कहने का यहाँ तो सब चमार बैठे हुए हैं
नहीं
है?
पर तुम भी स्थूलदर्शी तुमको समझा रहे हैं ना जो उपमा दिया गया
कि वहाँ से सुंदर जी इन शब्दों को ये भी कहा था आपने दो तीन व्यक्ति
कि एक समय में प्रभुपाद के कुछ सन्यासी नेमी महाराज थे बड़े विद्वान आदि और उनके साथ में सिद्ध स्वरूप ब्रह्मचारी इत्यादि 10-15 ब्रह्मचारी लोग ईस्ट बंगाल में प्रचार करने के लिए गए थे। तो उस समय में कुछ विवेकानंद जी का ये जो जितने भी जीव हैं वो सभी शिव हैं, शिव माने ब्रह्म हैं और जितना भी पथ है जितने भी मत हैं वो भगवान को पाने के लिए एक एक मत हैं, सभी बराबर है। ये इनका उस समय भारतवर्ष में और विशेष करके बंगाल भर में बड़ा जोर से प्रचार चल रहा था ना? जीव ही ब्रह्म है प्रत्येक और भगवान के नाम का कोई चीज नहीं, ये जो जीव है ये शरीर है यही ब्रह्म है भगवान है। इसलिए जितने रोगी हैं जितने निधि हैं इन लोगों की सेवा करने से ही भगवान की सेवा हो जाएगी। ये उस समय में खूब उनका प्रचार था। वो वहाँ जा करके उन लोगों में से सिद्ध स्वरूप ब्रह्मचारी थे एक दिन भाषण में दिया उठ करके, जो जीव कभी भी शिव नहीं हो सकता, जीव ही रहेगा शुद्ध होकर के अधिकतर अधिक से अधिक शुद्ध होकर के भगवान की सेवा कर सकता है बस, किंतु रहेगा जीव ही। जैसे आज तक कोई भी ब्रह्म होकर के कृष्ण नहीं बन गया, हनुमान जी तक शंकर जी तक भी भगवान नहीं बने, राम नहीं बने, उनकी सेवा की। नारद जी इतना तपस्या किया आज तक वो भगवान नहीं हुए, कोई भी शंकर जी आज तक भगवान नहीं बन गए, गणेश जी नहीं हुए। इसलिए जीव शिव नहीं हो सकता है, ब्रह्म नहीं हो सकता है। दूसरी बात, एक चोर का भी अपना मार्ग है, तो चोर कभी भगवान को पा जाएगा? एक आदमी देवता का भजन कर रहा है रुपये पैसे के लिए, धन संपत्ति के लिए, तो वो क्या कृष्ण को पा जाएगा? नहीं पा सकता। एक आदमी अस्पताल में काम कर रहा है जैसे डॉक्टर है, रोगियों की सेवा कर रहा है, ये भगवान को पा जाएंगे? नहीं पाएंगे। यहाँ तक कि देवताओं का भजन करने वाला देवलोक में जाएंगे और वहां से उस फल को प्राप्त होकर के फिर नीचे गिर जाएंगे, जब तक का भोग होगा। 5 वर्ष के लिए प्रेसिडेंट है, इसके बाद में
अभी नीचे जाएंगे,
उसके पहले भी गिर सकते हैं, उनको कोई नहीं पूछेगा ना? इसलिए देवता भी एक पद है, ब्रह्मा का भी एक पद है, वहां से नीचे गिर जाएंगे। इसलिए कोई भी भगवान को पाने के लिए एक ही मार्ग है भक्ति का, दूसरा कोई मार्ग नहीं है। भक्ति में भी हरे नाम हरे नाम हरे नाम, सहज सुंदर रूप में ये भगवान का नाम, किसे कलयुग के अतिरिक्त में और कोई उपाय नहीं। इसलिए उन्होंने कहा कि ये जो विवेकानंद हैं ये विवेकानंद नहीं है, विवेकानंद है, बिना विवेक के हैं। क्यों? ये उल्टी पुल्टी शास्त्रों से विरुद्ध बातें कहते हैं। गीता का ये विचार नहीं है, भागवत का विचार नहीं है, वेदों का ये विचार नहीं, महापुरुषों का ये विचार नहीं, किसी ने भी ऐसा नहीं कहा है कि जीव ही ब्रह्म है और जितने मत हैं सभी एक हैं। आकाश में जाने पर सब कुछ बराबर दिखता है, दिखता है ना? कहिए गलत बात, बेवकूफ ऐसा कहते हैं। ऊपर जाने से दृष्टि शक्ति के अभाव के कारण इसमें दृष्टि शक्ति का कमी है, इसलिए घास और पहाड़ भी और पेड़ भी बराबर दिखते हैं, वैसे ही मूर्ख लोग जो हैं, मूर्खता की हद जिसमें हो जाती है, वो लोग देखते हैं कि ये वैष्णव है, ये साधु है, ये चोर है, ये डकैत है, सब बराबर है। डकैत कभी भगवान को डकैती से पाएगा? ये राजनीति के पद से चल रहे हैं, आज देखे जी कितने आदमी मारे जा रहे हैं, इसे भगवान को पा जाएंगे? ये भी तो एक पथ है। कोई ये कहता है जी बुद्ध देव कहते हैं भगवान और वेद नहीं है, तो इस पथ से भगवान को पा जाएंगे? ये भी एक पथ है। इसलिए एकमात्र भगवत भक्ति, इसीलिए उन्होंने कहा ये बेकूफानंद, बेकूफानंद नहीं कहा उन्होंने, कहा बेवेकानंद, विवेकानंद नहीं, बे बे माने नहीं,
विवेक के अभाव
जिसमें है ये कहा। और वो सब लोग अपने आप बना चढ़ा करके कहा, उसी का था तो बस वो सारी सभा एकदम बिगड़ गई। नहीं पाया क्या? पाया क्या
भगवान को? तो दर्शन कर,
वही तो मुश्किल है। समझो दो चीज होता है, एक होता है अस्पताल में गया ना, रुपया खर्च किया, क्या हुआ तुम्हारा, तुमको मिला क्या? क्या मिला? यही तब बेवकूफी है। हमको जो रोग था वो रोग दूर हुआ, इस चीज को समझो। रोग हमको एक आकस्मिक भाव से नए रूप में रोग हो गया है, और उसे बड़ा कष्ट पा रहे थे उस रोग से, उस रोग को दूर किया, मिला तुमको क्या? ये निगेटिव एस्पेक्ट है। इसलिए
रोग दूर होने से फसला हुआ
कोई जरूरी नहीं है, कोई यही तो बतला रहे हैं महाप्रभु जी। इसलिए गीता को कहा जैसे ये बाहरी है, उसे कुछ लाभ नहीं होने का, तुम्हारे अंदर में जो कमी थी वो तो दूर हो गई, क्रोध दूर हो गया, किंतु क्रोध दूर होने से ही भगवान को मिल जाएगा, बिना भजन के नहीं मिलेगा। ये अफर्मेटिव चीज है, अफर्मेटिव माने सकारात्मक चीज है। और वो जो है नहीं नहीं नहीं, क्रोध मत करो, काम मत करो, द्वेष मत करो, काम क्रोध लोभ मद मोह मात्सर्य ये छोड़ दो, ये कुछ हद तक अपने को निर्मल बनाना है, बस शारीरिक आसक्ति छोड़ना है, अभी मिला नहीं तुमको। और यदि एक आदमी ये सब के लिए चेष्टा नहीं करता है, अजामिल जैसा व्यक्ति भी नारायण का नाम कर दिया बस, उससे ये सब तो दूर हो गया और भगवान की प्राप्ति हो गई। इसलिए ये अफर्मेटिव चीज है, वैष्णव का कहना यह है, भागवत का कहना यह है, तुम काम क्रोध को दूर करने के लिए चेष्टा मत करो, ये लाख जन्म लग जाएंगे और फिर भी तुम छोड़ देगा फिर आ जाएंगे, इसलिए अधिक मत चेष्टा करो। तुम नाम करो जिस अवस्था में है जैसे है, हरि भगवान की कथा सुनो, बस इससे भगवान मिलेंगे, वो क्रोध भी दूर हो जाएगा, काम भी दूर हो जाएगा और भगवान को भी मिल जाएगा, भक्ति इससे मिलेगी, ये अफर्मेटिव चीज है। इसलिए वैष्णव लोग काम क्रोध को दूर करने के लिए अधिक प्रयास नहीं करते हैं, जितना ही हरिनाम करेंगे, जितना ही भगवान की कथा सुनेंगे, ये सब अपने आप स्थायी रूप से दूर हो जाएगा। इसलिए भागवत में ये सब चीज नहीं कहा, भागवत में बतला है कि हरिनाम करो, भगवान की कथा सुनो, उनका अर्चन करो, पूजन करो, उनके भक्तों का संग करो, यह है, इससे वो भी दूर हो जाएंगे। और नहीं तो लाखों जन्म में तुम्हें क्रोध को नहीं जीत सकता है, मन को नहीं जीत सकता है। इसलिए महाप्रभु जी ने सारी गीता का उपदेश सुन करके कहा यो बाह्य गीता जैसे ग्रंथ को चल रहा, रामानंद इस विषय को समझे, दूसरों को समझने में बड़ा भारी कठिन है। इसलिए उनके जो अनुगत हैं वो लोग इस चीज को समझे। एक आदमी क्रोध को छोड़ने के लिए चेष्टा कर, उतने में तो लाख बार हरिनाम करके और भगवान का पूजन स्मरण गीता का भागवत का पाठ इत्यादि कर सकता है, सुन सकता है, उसमें काम भी दूर हो जाएगा, क्रोध भी दूर हो जाएगा। उदाहरण के लिए इसीलिए दिखलाया, गोपियों में काम था, उन्होंने कृष्ण को दे दिया, कृष्ण ही हमारे सर्वस्व, हमारे पति हैं, रहें कृष्ण के पति हैं, उसमें क्रोध की भी जीतने की जरूरत नहीं है, लोभ को भी नहीं, कुछ भी नहीं। हरिनाम करते समय तो क्रोध तो रहेगा रहेगा, धीरे 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 फिर ऐसा हो जाएगा सांप का विष दंत बाहर कर देने से सांप ऐसे काटेगा भी तो उसका कुछ फल नहीं होगा। वैसे महापुरुष जो क्रोध करते हैं, नारद जी ने क्रोध किया किस पर? किस हुआ क्या उनको? उनके क्रोध से भगवान मिल गए, उनका क्रोध भी मंगल का कारण होगा। वैष्णव का क्रोध, गुरु का क्रोध, यदि सचमुच में वैष्णव गुरु उनका क्रोध भी भगवान को मिला देगा, उनका शासन भी भगवान को मिला देगा।
मंगल रही
इससे बढ़कर और मंगल क्या हो सकता है? हरिदास ठाकुर को एक जमींदार के बहकाव में आकर हमको बहुत रुपया मिल जाएगा यदि हरिदास ठाकुर को नीचा दिखला दे, और वो तीन रात देश बना करके नाना प्रकार से चेष्टा की। उन्होंने कहा ये जरा बैठ करके अभी सुनिए हरिनाम, मेरी साधना ये पूर्ण हो जाएगी, हरिनाम थोड़े देर में ही होने ही वाला है, बस आप जो कहेंगी मैं मान लूंगा, आप थोड़ी देर खा। इस तरह से उनको दो रात सुनाया, तीसरी रात उसका चित्त निर्मल हो गया। देखिए तो लाख वर्ष तपस्या करने से होता जो हरिनाम करने से हुआ, उन्होंने सेवा करने से कभी छोड़ो, चित्त निर्मल हो गया। ऐसी साधु महंत बन गई, बड़े बड़े सिद्ध महात्मा लोग उसके चरणों के लिए उसके चरणों में जाकर के गए। इसलिए इससे बढ़कर के कोई साधन नहीं, देखने में ऐसा लगता है। तुम लोग समझो,
मैं पढ़ रहा था चैतन्य सरस्वती मध्य लीला में आया, चैतन्य महाप्रभु ने पूछा अकस्वादी से व्हाट इज द अल्टीमेट गोल ऑफ लाइफ।
चैतन्य सरस्वती में कौन तत्ववादी, कहाँ आपकी बात है?
साउथ इंडिया।
तत्ववादी जानते हैं किसको कहते हैं? मध्वाचार्य के संप्रदाय को तत्ववादी कहते हैं। उडुपी की बात है ये, उडुपी में महाप्रभु जब गए तो उनसे बात हुई। क्या बात हुई?
तो चैतन्य महाप्रभु ने पूछा व्हाट इज द अल्टीमेट गोल ऑफ लाइफ, तो उन्होंने उत्तर दिया कि भगवान विष्णु की प्रशंसा के लिए वर्णाश्रम धर्म का पालन करने से हम लोग बैक टू गॉडहेड जा सकते हैं, यही गोल ऑफ लाइफ। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा नहीं, दिस इज नॉट ए गोल ऑफ लाइफ, द रियल गोल ऑफ लाइफ इज द लव ऑफ गॉडहेड।
आपने वो इंग्लिश माध्यम से पढ़ा?
हाँ जी। तो मूवी थ्रू श्रवणम के चरण जैसा आपने कहा अल्टीमेट गोल ऑफ लाइफ, तो इसके बारे में
देखिए इस जगत में साधारण लोगों का उद्देश्य होता है कि मैं सुखी रहूं, उसके लिए धन कमाना सुख के लिए जरूरी है, कुछ लोगों का ये विचार है ना। एक चपरासी है, चपरासी समझता है ना ऑफिस में, वो भी धन कमाता है। एक वकील, एक व्यवसायी भी रुपया कमाता है, प्रधानमंत्री भी पैसा कमाते हैं, ऐसे नहीं करते, एक प्रेसिडेंट भी पैसा कमाता है। तो पैसा कमाने में कोई स्तर है या नहीं है ना? एक चपरासी को वह सम्मान मिलेगा और रुपया मिलेगा जो कि राष्ट्रपति को मिलता है, दोनों का स्तर एक नहीं है। तो उसी तरह से विष्णु आराध्यते इस श्लोक में है, वर्णाश्रम आचार्यता पुरुषे न परह को मान विष्णु आराध्यते पंथा न तत्सोष कारण। उन लोगों ने कहा विष्णु की आराधना ही सबसे बड़ी चीज है। महाप्रभु जी ने कहा यह बात गलत है, ठीक नहीं। क्यों ठीक नहीं है? कि वर्णाश्रम में जो भगवान का भजन किया जाता है, विशेष करके गृहस्थी में रह करके जो वर्णाश्रम धर्म वाले हैं, जो करते हैं वो हाईएस्ट टॉपिक हाईएस्ट उद्देश्य नहीं है, थोड़ा सा है। क्या होगा? पालन करना, उनकी सेवा करना, स्त्री के प्रति तुम्हारा जो कर्तव्य है और स्त्री का वर्णाश्रम धर्म में पति के प्रति जो कर्तव्य है, पुत्र का जो पिता के प्रति कर्तव्य है और पिता का भी पुत्र के प्रति कर्तव्य है। एक आदमी समाज में रहता है, समाज में भी मनुष्य का कोई कर्तव्य है, दान देना, गरीब लोगों की सेवा करना, इस तरह से विष्णु की आराधना करते हुए इन सब कामों को करे तो सहज ही भगवान को ही प्राप्त होगा। महाप्रभु जी ने कहा यह बाह्य कारण है, इसमें संतोष नहीं, जीवन का अंतिम गोल यही है।